जैसे ही रश्मि ने महसूस किया कि आस्था भ्रम से उसकी ओर देख रही थी, उसने तुरंत हंसना बंद कर दिया। आकाश तब तक केबिन से बाहर निकल गया था। रश्मि बोली, आई एम सो सॉरी मिसेस सिंघानिया। वो बस, रश्मि ये कहते हुए शर्मा रही थी। उसने आकाश की ओर आंख मार दी थी, फिर भी उसे शर्मा रही थी। ये हरकत उसने पहली बार की थी, लेकिन आकाश को इस तरह छेड़ने में उसे बहुत मजा आ रहा था। आस्था ने रश्मि की ओर देखते हुए कहा, रश्मि जी, क्या आप आकाश भैया को पसंद करती हैं? आस्था ने मासूमियत से रश्मि से ये सवाल सीधे सीधे पूछा। रश्मि मानो किसी का कंधा ढूंढ रही थी। उसने तुरंत कहा, पसंद करती हूँ? अरे उस पर मैं मरती हूँ, और आज से नहीं 5 सालों से उसके पीछे दीवानी हूँ। लेकिन वो बंदा मजाल कि मेरी तरफ आंख उठाकर भी देख ले। पता नहीं उसके दिमाग में क्या चल रहा है, मुझे देखता तक नहीं है। 2 साल पहले तो मैंने खुद उसे प्रपोज किया था और उसने मुझे साफ साफ मना कर दिया। इनफैक्ट मेरे अपमान की वहालक। ये सुनकर आस्था हैरान हुई और बोली कि आपने प्रपोज किया था? क्या लड़कियां भी लड़कों को प्रपोज कर सकती हैं? रश्मि आस्था की बातें सुनकर हैरान हुई और बोली, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? लड़कियां प्रपोज क्यों नहीं कर सकती हैं? अगर लड़कियों को कोई पसंद आ जाता है तो उसे भी प्रपोज करने का पूरा हक है। यार तुम ऐसा क्यों कह रही हो? क्या तुम्हें कभी किसी ने प्रपोज नहीं किया क्या? आस्था ने मासूम सी शक्ल बनाकर अपने कंधे उचका दिए और बोली, ये आप कैसी बातें कर रही हैं डॉक्टर जी? भला हम किसी को पसंद कैसे कर सकते हैं? अगर हमने किसी लड़के से बात भी की तो हमारी नानी माँ हमारी टांगे ही तोड़ देगी। आस्था ने बेचारा समूह बना लिया। रश्मि उसके इस तरह के जवाब को सुनकर मन ही मन हंसने लगी। उसे ऐसा लगने लगा कि आस्था किसी और ही दुनिया से आई हो। वो पूछने लगी, टांगे तोड़ देंगी मतलब क्या है तुम्हारा? एक भी लड़का दोस्त नहीं है? आस्था बोली, नहीं नहीं, हमारा तो कोई भी दोस्त नहीं है, और हमारी नानी माँ ने तो हमें आज तक कभी किसी लड़के से बात भी नहीं करने दिया। गांव का जो प्रधान का बेटा था ना मिंटू, एक बार उसने हमसे बात करने की कोशिश की थी, तब हमारी नानी माँ ने जो झाड़ू से उसको इतना मारा इतना मारा, उसके बाद से वो कभी भी हमारी गली में नहीं आया था। आस्था डॉक्टर रश्मि को अपने गाँव के किस्से सुनाने लगी। रश्मि को आस्था की बातें बहुत दिलचस्प लग रही थी और वो आस्था के साथ बहुत इंजॉय कर रही थी। वो बोली, आस्था तुम कहाँ से हो? आस्था ने जल्दी से कहा, हम तो रजतपुर गांव से आए हैं। हमारे गांव का नाम रजतपुर है। आप जानती हैं वो उधर पहाड़ियों के पास है। हमारा गांव बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत है। हमारे गांव में जो बस जाती है ना, वो पहाड़ियों से होते हुए गुजरती है। आस्था की बातें सुनकर रश्मि का दिल किया कि वो दिल खोल कर हंसे, लेकिन वो सोचने लगी कि अगर वो इस तरह से आस्था के मुँह पर हंसेगी तो शायद आस्था को बुरा भी लग सकता है। आस्था से तो उसकी अभी नई नई दोस्ती की शुरुआत हुई थी, इसलिए वो आस्था को गुस्सा दिलाना नहीं चाहती थी। रश्मि ने आस्था का हाथ पकड़ा और बोली, अच्छा अच्छा, हम तुम्हारे गांव की बातें, तुम्हारे गांव के किस्से किसी और दिन सुनेंगे, लेकिन अभी दादाजी ने बताया कि तुम्हारे हाथ में कुछ प्रॉब्लम है। बताओ वहां कुछ हुआ है क्या? आस्था ने जल्दी ही अपना दुपट्टा हटाया। रश्मि ने आस्था के फ्रॉक कट में से उसके कंधे के पास के गहरे नीले निशान देखे तो उसे समझ आ गया कि ये किसी के उंगलियों के निशान है। उस पल रश्मि की आंखों में गुस्सा आ गया और वो बोली, ये सब क्या है आस्था? अरमान ने तुम्हें हर्ट किया है? क्या इस तरह से कोई करता है? ये कैसे हुआ आपके साथ? आस्था बोली, वो हमारी इसमें कोई गलती नहीं है। उन्होंने हमें जब भी पकड़ा है यहीं से, इसी हाथ के कंधे के पास से पकड़ा है, और अब तो हमारे हाथ में बहुत ज्यादा दर्द होने लगा है। वहां पर इतने सारे ड्रेस, इतने ज्यादा महंगे महंगे ड्रेस थे कि हमें कुछ समझ ही नहीं आया कि हम कौन से कपड़े पहने। फिर हमें यही ड्रेस थोड़ा ठीक लगा तो हमने यही ड्रेस पहन लिए, लेकिन इनमें से भी ये हाथ दिखाई दे गया। हमने इसे छुपाने की भी कोशिश की, लेकिन दादाजी ने इसे देख लिया और फिर दादाजी ने हमें आपके पास भेज दिया। आस्था ने मासूम तरीके से सारी बातें डॉक्टर रश्मि को बताई। डॉक्टर रश्मि बोली, तुम फिक्र मत करो, हम अरमान से बात करेंगे, तुम्हारे साथ आइंदा से वो नरमी से पेश आएगा। आस्था तुरंत बोली, नहीं 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 रश्मि दीदी, अगर उस राक्षस को पता चल गया कि हमने उसकी शिकायत आपसे की है तो वो पता नहीं कौन सा रूप धारण कर लेगा। अरे वो नॉर्मल इंसान नहीं है, वो एक नंबर का पिशाच है, पिशाच। और आपको पता है, हमें उसके बारे में बचपन से पता है, बचपन से। आस्था की गोलमटोल बातें सुनकर रश्मि हैरान हो गई और सोचने लगी, क्या आस्था अरमान को बचपन से जानती है? रश्मि भी कई सालों से अरमान को जानती है, लेकिन अरमान ने कभी नहीं बताया कि वो किसी आस्था को जानता है। इनफैक्ट आज तक उसके आसपास कभी किसी लड़की को भी नहीं देखा गया है। रश्मि हैरानी से बोली, क्या तुम अरमान की चाइल्डहुड फ्रेंड हो क्या? अरमान तुम्हें बचपन से जानता है? आस्था ने मासूमियत से कहा, अरे नहीं नहीं रश्मि दीदी, भला हम उस राक्षस को क्यों जानेंगे, हम नहीं जानते उसे। रश्मि बोली, लेकिन अभी तो तुमने बोला कि तुम बचपन से अरमान को जानती हो। आस्था बताने लगी, हाँ, वो तो हमें हमारी नानी माँ ने बताया था कि हमारे गांव में जो पीपल का पेड़ है वहीं पर इस तरह एक पिशाच रहता है, और वो पिशाच ही वो मिस्टर अरमान सिंघानिया है, ये बात हम जानते हैं। लेकिन आप प्लीज इस बात के बारे में किसी को मत बताइएगा, क्योंकि ये पिशाच लोग बहुत ज्यादा डरावने होते हैं और ये लोगों का खून तक पी जाते हैं। डॉक्टर रश्मि ने आस्था की बातें सोचकर सोचने लगी, कहीं इस लड़की को कोई मनोवैज्ञानिक समस्या तो नहीं है, ये किस तरह की बातें कर रही है। डॉक्टर रश्मि ने अपना दिमाग झटक दिया और सोचने लगी कि मुझे लगता है कि इसका इलाज जल्दी करना चाहिए और उसे यहाँ से जल्द भेजना चाहिए। अगर मैं कुछ देर और इस तरह की बातें सुनती रही तो मैं तो पक्का पागल हो जाऊंगी, और मैं आकाश से शादी किए बिना, उसके बच्चे पैदा किए बिना पागल नहीं होना चाहती। डॉक्टर रश्मि बोली, डेफिनेटली अरमान पिशाच होगा। अच्छा आस्था, अब तुम अपने पिशाच की कहानी हमें बाद में सुनाना, अभी दादाजी ने तुम्हें जिस काम के लिए यहाँ भेजा है पहले हम वो काम कर लें। डॉक्टर रश्मि ने जानबूझकर अपने होठों पर एक छोटी मुस्कुराहट लाते हुए बड़े ही प्यार से ये बोला। आस्था जल्दी से बोली, हाँ हाँ दीदी, क्यों नहीं प्लीज, वैसे भी हमें बहुत दर्द हो रहा है। अगर हमें दर्द नहीं होता तो हम आपको दिखाने भी नहीं आते, और फिर हमने सोचा कि इसी बहाने आपसे भी मिलने का मौका मिल जाएगा, आस्था मुस्कुरा दी। डॉक्टर रश्मि आस्था के हाथों को चेक करते हुए सोच रही थी कि क्या ये लड़की वाकई इतनी मासूम है। अगर ये इतनी मासूम है तो ये अरमान सिंघानिया जैसे बेरहम की जिंदगी में क्या कर रही है। रश्मि को आस्था से सहानुभूति होने लगी थी। आस्था बोली, अच्छा रश्मि दीदी, ऐसा क्या कारण है कि आकाश भैया आपसे शादी नहीं करना चाहते हैं? आप तो इतनी खूबसूरत हैं, पता है हमने तो आपके जैसी खूबसूरत लड़की कभी नहीं देखी है। ये सुनकर रश्मि मुस्कुरा दी और बोली, ये बात तो तुम अपने आकाश भैया से ही पूछना कि वो मुझे पसंद क्यों नहीं करते हैं। आस्था अपनी आंखें गोल गोल घुमाने लगी। जब भी आस्था अपनी आंखें गोल गोल घुमाती थी तब उसके दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा होता था। वो बोली, अच्छा रश्मि दीदी, हमारे पास एक आइडिया है जिससे आकाश भैया आपसे शादी करने के लिए हाँ कह देंगे। डॉक्टर रश्मि आस्था के हाथों को अच्छी तरह से चेक करके उस पर कुछ लोशन लगा रही थी। वो तुरंत हैरानी से उसके सामने आकर बोली, क्या कहा तुमने, तुम्हारे पास ऐसा कोई आइडिया है जिससे आकाश मुझसे शादी करने के लिए हाँ कह देगा? आस्था बोली, हाँ हाँ, आपको पता है हमारे गांव में एक बचपन की सहेली थी मीना, उसको हमारे पास के ही एक दूसरे गांव के एक लड़के से प्यार हो गया था।
जैसे ही नानी माँ को पता चला था कि मीना किसी लड़के से प्यार करती है, तब नानी माँ ने हमारा मीना से भी मिलना जुलना बंद करवा दिया था, क्योंकि हमारी नानी माँ को बिल्कुल भी पसंद नहीं है किसी लड़के या लड़की का इस तरह से मिलना। लेकिन फिर भी मीना हमारी बचपन की दोस्त थी, हम उसे ऐसे बीच में थोड़ा ही ना छोड़ सकते थे। आपको पता है हमने मीना को उसके प्यार से मिलवाने में कितनी मदद की थी? हमने मीना के बापू को एक लेटर भिजवा दिया था और उसमें साफ साफ ये बात लिखती कि मीना इस तरह से पड़ोस के गांव के लड़के को पसंद करती है, और अगर आपने मीना की शादी उस लड़के से नहीं करवाई तो मीना घर छोड़कर भाग जाएगी। और ऐसे ही एक सेम लेटर हमने उस लड़के के घर पर भिजवा दिया था कि आपका लड़का इस तरह से पड़ोस के गाँव की एक लड़की मीना से प्यार करता है, अगर आपने उसकी शादी उससे नहीं करवाई तो वो घर छोड़कर भाग जाएगा। अब आप लोग सोच लो कि आप लोगों को अगर अपनी इज्जत बचानी है तो उनकी शादी आपस में करवा दो। आपको पता है फिर क्या हुआ डॉक्टर दीदी? अपनी इज्जत के डर से उन दोनों के माँ बाप आपस में मिले और उन दोनों का रिश्ता पक्का करवाकर जल्दी ही उनकी शादी करवा दी। आपको पता है मीना आज कितनी खुश है? मीना बहुत खुश है। आस्था ने अपनी बत्तीसियां दिखा दी। रश्मि आंखें फाड़कर आस्था को देखने लगी और मन मन में सोचने लगी, बाप रे, ये कितनी खतरनाक लड़की है।